پروفیسر جگن ناتھ آزاد 1918 میں پنجاب کے ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ اردو زبان کے معتبر شاعر و دانشور تھے۔ تقسیم ہند کے بعد آپ عیسیٰ خیل میاں والی سے انڈیا چلے گئے، لیکن آخر دم تک انڈو پاک اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ابتدائی 18 ماہ تک پاکستان کا قومی ترانہ ان کا تخلیق کردہ تھا، جو پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے قائد کی فرمائش پر تحریر کیا تھا۔ اے سرزمین پاک، ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک، روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک، تم دیے حاسداں پہ ہے غالب تیرا سواک، دامن مسل گیا ہے جو تھا مدتوں سے چاک۔ اے سرزمین پاک، اب اپنے عزم کو ہے نیا راستہ پسند، اپنا وطن ہے آج زمانے میں سر بلند، پہنچا سکے گا اس کو نہ کوئی بھی اب گزند، اپنا علم ہے چاند ستاروں سے بھی بلند، اب ہم کو دیکھتے ہیں عطارد ہو یا سماگ۔ اے سرزمین پاک، اترا ہے امتحان میں وطن آج کامیاب، اب حریت کی زلف نہیں محو پیچ و تاب، دولت ہے اپنے ملک کی بے حد و بے حساب، ہوں گے ہم آپ ملک کی دولت سے فیض یاب، مغرب سے ہم کو خوف نہ مشرق سے ہم کو باک۔ اے سرزمین پاک، اپنے وطن کا آج بدلنے لگا نظام، اپنے وطن میں آج نہیں ہے کوئی غلام، اپنا وطن ہے راہ ترقی پہ تیز گام، آزاد با مراد جمع بخت شاد کام، اب عطر بیز ہیں جو ہوائیں تھی زہرناک۔ اے سرزمین پاک، ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک، روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک۔ اے سرزمین پاک،
At first it was easy and I used to get a lot of things done really smoothly. Life was simpler and my to-do list had a lot of ticks every day. I felt happy and light. Time passed by and I did not realize how I had started facing little hindrances in the work. They came slowly, as I never really got to do much about them other than talking about them over tea. Time passed by and gradually the little interruptions started becoming big that most of us noticed and discussed. Barriers and barbed wires. We started taking the longer, formal routes to reach nearby places that we once enjoyed by getting through from our very own intimate secret paths. Concerned at first, but as they kept coming slowly and gradually, there came a time we got used to them, and then one day, bang! Terrified, large gatherings, protests, slogans, people united, white, dispersed, mourning, work, food, children, home, another bang, terrified, and more bangs, this time lesser people, lesser unity, bang, oh that's sad, bang, there goes the building, thank God I wasn't in it, bang, 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 silence. And the white remains.
authorized and directed to employ your resources to carry on war against the present and to bring the conflict to a successful termination. All of your resources are hereby pledged by your conscience. We are now in this war. We are all in it all the way. Every single one of you must share the changing fortunes of the war. It is the evil things that we shall be fighting against, and against them we are certain the right will prevail. We are going to win this war, and we are going to win the peace that follows.
शुरू में जिंदगी बड़ी अच्छी होती थी और मैं स्कूल जाता था और वापस आता था और सब कुछ हो जाता था और काम भी हो जाता था और कोई टेंशन नहीं होती थी और फिर कुछ पता नहीं तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई और एकदम से नहीं हुई मैंने आहिस्ता आहिस्ता आई इतना आहिस्ता आई कि आपको पता भी नहीं चले कि आ गई हैं ऐसी बात है और फिर एक दिन मैं जा रहा हूँ साइकिल पर और मैंने हेलमेट पहना होता था तो ये बड़ा अच्छा सीन होता था क्योंकि कोई भी मुझे रोकता नहीं था वो समझते हैं मैं अंग्रेज़ हूँ बोल रहा हूँ मैं साइकिल पे जा रहा हूँ और वो मुझे रोकते हैं और कहते हैं आईडी कार्ड दिखाओ मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ ये क्या सीन है भाई मुझसे आईडी कार्ड क्यों मांग रहे हो तो खैर मैंने उन्हें बताया कि मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है तो मैं बच्चा हूँ छोटा था तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सवाल सवाल पूछे फिर जाने दिया तो ठीक है चलो ये सब ज़रूरी होता है पर एक दिन जा रहे हैं जी और बैरियर आ गया सामने और जी मजे से कहते हैं रास्ता बंद है क्यों बंद है भाई जी सिक्योरिटी भाई अब क्या कर सकते हैं अच्छा भाई मुड़ के जाते हैं दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और दूसरे रास्ते पे शदीद ट्रैफिक है और वो इंसानों के लिए असल में नहीं बना तो और वो लंबा भी है और आप फिर सोचते हैं कि कोई तो तरीका होगा कि सिक्योरिटी अपनी कवर कर सकते हैं पर इतनी ज़िंदगी हमारे लिए आज़ाद न बनाए और अब चल चल रस्ते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और लाइनें लगी हुई होती हैं सब लोग एक दूसरे में हॉर्न बजा रहे होते हैं और आप सुबह अगर स्कूल जा रहे हैं और आपका दिन की शुरुआत यूँ होती है तो आप तो पागल हो जाते हैं मैं भी हो जाता हूँ चिड़चिड़े हो जाते हैं और हर जगह चिड़चिड़ाहट फैल गई है लेकिन अब कुछ भी होता है तो अबा लगे होते हैं महंगाई हो गई है बड़ा गंदा ज़माना है यार क्या कर सकते हैं तो टेंशन मत लेना पर नहीं टेंशन लेनी है लोगों ने और कुछ लोगों का होता है मसला और वो फिर टेंशन आप में भी घुस जाती है और सब चीज़ें इफेक्ट करने लग जाती हैं आपको और अब ज़िंदगी वो अच्छी थी नहीं रही
Today, there is a notion to outlive the present by erasing it altogether. This is a reaction to today's relentless behavior. Today is not popular today and never has been. Its oblivion emblems its vanity. Today is pregnant with nasty political talk shows, high-priced sugar, expensive petrol, so-called religious extremes, mediocre education, if at all, unemployment, etc. Rational solutions to eradicate such problems of juvenile delinquent today come along only after a deep, rested sleep. This sleep of ignorance will teach today a lesson. It will stop whining and fix itself. No one will be there to vote in the elections of today, and no one will be there to document its glorified failure.
It'll then rise to the occasion and metamorphose into a bright future. When we wake up, we'll find an altered future and the same old today dead.
Layer by layer. A photo of a star equals a photo of a potentially dead body. The source already burned out before the rays hit the film. Its light travels so far that when it reaches its destination, it has already forgotten where it came from. Wavelengths outlive homesickness. But not the star consumes itself. It is being destroyed. With every shot, the photographer clears away a thin layer of his motive, bombards it with particles that spread hairline cracks all over its shell that make it brittle, that make it collapse. He gets away with murder, murder in the millionth degree, and he makes no difference between things or beings. Layer by layer, he takes a little bit of life. Particle by particle, he disintegrates the body, until everything falls apart. I understood that, and made the archive of the city of Cologne collapse, because it was standing in my way. Just a couple of photographs. Its hull was already cracked, and it was tired, didn't resist all too much, and just let itself break down. A heap of dust was not all that was left. And now I'll tear down everything and everybody that ever stood in my way. I'll meet no resistance, no defense, and those who won't collaborate will be infiltrated, permeated, violated. I'll shoot 1,000 little holes into their backs until they'll be completely perforated, and the sunlight that falls through the wounds will fill their hollow insides like the light of a candle fills a paper lantern. With a single last shot, they'll break into shards. And once everything is destroyed, I'll aim the camera at myself and set the self-timer to automatic.
I am speaking to you from the station 30 degree north 70.